इस सत्र के विषय में आप सुने महाराज के मुख से। महाराज श्री हमको ब्रह्मचारी क्लास के लिए कहे और ओरिजिनल ब्रह्मचारी क्लास का निर्देश भी दिए। प्रहलाद महाराज ब्रह्मचारी क्लास दिए हैं तो उसी को यहाँ प्रस्तुत करना है। हम एक दो बात आप लोगों से कहेंगे, ये एक दिन का ब्रह्मचारी क्लास नहीं है, ये कुछ दिन चलेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि संस्कृत श्लोकों को भी थोड़ा छूते हुए चलें, और इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग श्लोक के तरफ भी ध्यान देंगे, और जो जरूर आप लोगों को कठिनाई लगेगी तो वह बात पूछ सकते हैं क्लास के अंत में। तो इसमें केवल हम बोलते जाएंगे, आपको बैठ करके सुनना है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी सक्रिय रहना है। और हम लोग श्लोक की आवृत्ति भी करेंगे, और सब तो पीछे से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये वृंदावन बिहारी दास का जिम्मेवारी होगी कि अधिक से अधिक लोगों को सबका भागीदारी हो, जो कभी श्लोक नहीं बोलते हैं उनको भी यहाँ प्रारंभ करना होगा। ऐसा नहीं कि दो चार लोग जो बोलते हैं वही बोलेंगे, और किसी से मैं प्रश्न भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि पीछे रहने से अब उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो जो भी चर्चा होगी तो उसे संबंधित प्रश्न भी किए जा सकते हैं, आपको भी प्रश्न करने का छूट है और हम भी प्रश्न करेंगे। और अब ये कई एक दिन तक चलता रहेगा, तो इसलिए उस हिसाब से अपना रूटीन सेट कर लेना चाहिए, आकर के उपस्थित हो, कोई बोझ अनुभव नहीं करेंगे, आपकी भागीदारी रहेगी। और हम लोग का मुख्य विषय है प्रहलाद महाराज की शिक्षा, जो उपदेश दिए हैं महाराज, अध्याय का भी निर्देश कर दिए, लेकिन हम लोग छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके पहले तो क्लास के सेटअप के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, खास करके जो स्टूडेंट हैं उनका क्या गुण है, जो ब्रह्मचारी काउंसिल हैं, लीडर हैं, उनका क्या गुण है। तो हम लोग आज उनके गुण पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद उनके वचन पर फिर हम लोग विचार करेंगे। और उसी क्रम में हम एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे, और यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे। आप लोग पीछे से बोलिए, निकाले हैं ना, 7:04:30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपतेः पुत्रः चत्वारः परम अद्भुतः परमाद्भुतः प्रह्लादः अभूत् महान् तेषां गुणैः महत् उपासकः। त तस्य दैत्यपतेः पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुन्महांस्तेषाम् गुणैर्महदुपासकः तस्य दैत्यपतेः पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुन्महांस्तेषाम् गुणैर्महदुपासकः तस्य दैत्यपतेः पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुन्महांस्तेषाम् गुणैर्महदुपासकः तस्य दैत्यपतेः पुत्रः
प्रह्लादो भुम्नहस्तेषाम् गुणैर्महदुपासकः चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भुन्महांस्तेषाम् गुणैर्महदुपासकः
उस हिरण्यकश्यपु दैत्यपते है दैत्यों के राजा के पुत्र है पुत्रगण चत्वार चार परम अद्भुत है अत्यंत योग्य तथा अद्भुत प्रह्लाद प्रह्लाद नामक अभूत था महान सबसे बड़ा तेसाम उनमें से गुण ही दिव्य गुणों के कारण महत उपासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हिरण्यकश्यप के चार अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे जिसमें से प्रह्लाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रह्लाद समस्त दिव्य गुणों के खान थे क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। तात्पर्य जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुराः जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्तिमय निष्ठा है उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। भागवत 5:18-12 यहाँ पर समस्त सद्गुणों के खान महाराज के प्रह्लाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूजन के कारण हुई है। अतएव ऐसे शुद्ध भक्तों में जो निष्काम होता है समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण अध्यात्म प्रबुद्ध होता है तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, यदि कोई भक्त नहीं है तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण होते हैं वे अर्थहीन होते हैं, यह वेदों का निर्णय है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आप सप्तम स्कंध के कथा से परिचित हैं। भगवान के गुण के विषय में प्रश्न किया गया और उसी के उत्तर देने के क्रम में हिरण्यकश्यपु की चर्चा आई है और उसके वध की बात है। भगवान ने उसका वध किए, उसके पीछे कारण था कि वह प्रहलाद महाराज से द्वेष करता था, उनको बहुत कष्ट दिया। देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, चाह रहे थे कि हिरण्यकश्यपु का वध हो, वे बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि भगवान विलंब कर रहे हैं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिए कि और सब कुछ मैं सह सकता हूं, लेकिन भक्तों के द्वेष को नहीं सह सकता। जो भक्तों से द्वेष करेगा तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से द्वेष कर रहा था, जबकि प्रहलाद महाराज अनेक गुणों से संपन्न थे और भगवान प्रहलाद महाराज के गुणों का संकेत किए हैं निर्वैराय प्रशांताय। वे निर्वैर हैं, किसी के प्रति उनका वैर विरोध नहीं है और प्रशांत है, कोई भोग की इच्छा नहीं है। तो भगवान जो संकेत किए हैं और उसे गुण को नारद जी थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं, तो इसी क्रम में कह रहे हैं कि तस्य दैत्य पते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु दैत्यों का राजा है और उसके चार पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि प्रहलाद अभून महान स्तेसा। ये चारों में प्रहलाद बहुत महान हुए, सबसे महान थे। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि परमाद्भुता, ये अद्भुत ही नहीं परम अद्भुत व्यक्तित्व वाले थे। लेकिन जो भी गुण है, जो भी विचित्रता है, उसके पीछे कारण क्या है, की पॉइंट क्या है, तो कह रहे कि महद उपासक, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके बतला रहे हैं कि भगवान के भक्ति से देवता के गुण, ये भगवान के गुण भी स्वतः भक्त में उभरने लगते हैं। यहां शब्द दे रहे महत उपासक, महत उपासक। महत का क्या अर्थ होता है? तो महत का अर्थ है भगवान होता है, महत मतलब बड़ा, ब्रह्म है जो व्यापक है, सबसे बड़ा है, बृहद वस्तु है। तो महत और ब्रह्म है तो एक ही अर्थ में है, लेकिन जो प्रचलित अर्थ है, स्थापित अर्थ है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो महत उपासक मतलब भगवान के भक्तों के भक्त। महत शब्द तो भगवान के भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है, बिना महत पाद रजो विशेष। यहां शब्द दे रहे हैं महद उपासक। इसका आशय यह है कि भागवता नाम भक्ति पर्यंत भगवत भक्ति निष्ठ। देखिए भक्ति का कई एक स्तर है। कुछ लोग भगवान में भक्ति रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के उन्नति को आप देखेंगे, उसके ऊंचाई को देखेंगे, तो जो भगवान के भक्तों के सहित भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहां प्रहलाद महाराज के लिए शब्द आ रहा है महद उपासक, वे भगवान के भक्त हैं, लेकिन शब्द दे रहे हैं इसका अर्थ है कि भगवान के भक्तों के उपासक। वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से स्वाभाविक ही उनका गुण हमारे अंदर आ जाता है। ये केवल वायरस का संक्रमण ही नहीं होता है, ये तो जड़ चीज है, मटेरियल चीज है, भौतिक संक्रमण हो रहा है। तो आध्यात्मिक जो गुण है तो उनका भी संक्रमण होता है। ये सब रेडिएशन क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह भी ये सब स्पिरिचुअल जगत में भी देखा जाता है। तो भगवान के भक्तों के दर्शन से, उनके सान्निध्य से स्वाभाविक ही उनके गुण हमारे अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रहलाद महाराज अपने भाइयों में सबसे श्रेष्ठ हैं और अद्भुत ही नहीं परम अद्भुत गुणों से युक्त हैं। तो उसके पीछे रहस्य यह है कि महद उपासक वे भगवान के भक्त हैं, और इसके साथ ही भगवान के भक्तों के भक्ति से युक्त है, उनका संग किए हो, इसलिए वे महान हुए। अब कौन कौन उसमें गुण है और कुछ गुणों का संकेत कर रहे हैं। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय, कई एक गुण को दिखा रहे हैं। अब उसके पहले एक चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द दे रहे हैं कि महद उपासक, अवे भगवान के भक्तों के उपासक। एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति में उपाधि का बहुत महत्व नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है और उसका उदय कहीं भी होता है। वो चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, भक्ति किसी का वर्ण कर सकती है। और इसी से ये सब उपाधि के पीछे बहुत नहीं रहना चाहिए, कभी कभी क्लेश हो जाता है ब्रह्मचारी गृहस्थ। और वास्तव में ये सब है शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो इस शास्त्र संगत चीज नहीं है, और खास करके हम लोगों की जो संस्था है और इसमें तो इसका बिल्कुल भेद नहीं है। हम लोग संन्यास के क्रम में कई एक ट्रेनिंग लिए, और संन्यास के ट्रेनिंग में भी गृहस्थ लोग ट्रेनिंग देते हैं। राधा श्याम सुंदर जी चैतन्य भवन में और ट्रेनिंग के समय गृहस्थ भी थे, और गृहस्थ की बात तो छोड़िए, माता जी भी कुछ क्लास दी। संन्यास का ट्रेनिंग हो रहा है और माता जी भी क्लास दी, और आप संन्यास बोर्ड पर विचार करेंगे, हमें तो ठीक से नहीं पता है, लेकिन हम समझते हैं कि आधा गृहस्थ निकल सकते हैं। और अब हम लोग जिस प्रोसेस से गए हैं, और कई एक कमिटी इंटरव्यू लिया है, तो कानपुर में तो इंटरव्यू हुआ तो सब लोग थे, वहां भी प्रेसिडेंट अधिक गृहस्थ ही हैं। यद्यपि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हम उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन एनआईडीसी का जो इंटरव्यू हुआ तो उसमें एक कभी ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, सब गृहस्थ थे। लीगल ऑफिस में सब गृहस्थ इंटरव्यू लिए। इसके बाद आईआईएससी का कमिटी इंटरव्यू लिया तो उसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों, सन्यासी उसमें नहीं कोई थे। और ऊपर जो सन्यास बोर्ड इंटरव्यू लिया, और यद्यपि प्रहलादानंद महाराज भी कुछ लोगों का लिए, लेकिन कुछ लोगों का गृहस्थ इंटरव्यू लिए, वो सन्यास कैंडिडेट बनने जा रहे हैं लेकिन इंटरव्यू गृहस्थ लिए। तो हम यह कह रहे हैं कि कई एक बार केवल सन्यासी ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, किसी किसी सत्र में ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं, और किसी किसी सत्र में गृहस्थ, यहां तक कि माताजी सन्यासी ब्रह्मचारी सब होते हैं। तो भक्ति में उपाधि का बहुत महत्व नहीं, किस स्तर का भक्ति है उसका असर आएगा। देखिए भक्ति का प्रभाव कैसे होता है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई खूब महंगा कपड़ा है, मखमल का कपड़ा है और बिल्कुल सूखा है, तो उसको कहीं रगड़ते रहिए वो कुछ गीला नहीं कर पाएगा। लेकिन मार्किन समझ रहे हैं, मोटिया मार्किन, वो भी यदि भींगा है उसके एक बार भींग दे कितना हो उसको निचोड़ दीजिए, पानी एक तरह से निकाल दीजिए, लेकिन फिर भी कहीं रख देंगे तो कुछ ना कुछ असर आ जाएगा। जिसके हृदय में भक्ति है वो भक्ति का असर आ जाता है। और प्रहलाद महाराज में जो गुण आया है और उसके पीछे मुख्य कारण महद उपासक, वे भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों के भक्त हैं। तो उनके गुण को कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्य का अर्थ है जो ब्राह्मणों के प्रति अच्छा व्यवहार कर, या भगवान को ब्रह्म कहते हैं तो भगवान के प्रति श्रद्धा युक्त है तो उसको ब्रह्मण्य कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य शील संपन्न, वे भगवान में श्रद्धा रखते थे, ब्राह्मणों का सत्कार करते थे, और कह रहे हैं कि शील संपन्न, शील संपन्न, शील से युक्त थे। शील का अर्थ है सुंदर व्यवहार, सुंदर स्वभाव, सुंदर स्वभाव को शील कहते हैं। अरे भाई सुंदर स्वभाव ये क्या होता है? ओ महाभारत के अनुसार शील का अर्थ है कि मन वाणी और शरीर के किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, सब पर दया करना, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, और शील का मुख्य अंश यह। और शील ऐसा गुण है कि इससे सारे संसार की संपदा आ जाती है। महाभारत में एक कथा है कि प्रहलाद महाराज अपने शील के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य ग्रहण कर लिए। इंद्र का जो भी ऐश्वर्य है वो तो प्रहलाद महाराज के अधीन आ गया। अब प्रहलाद महाराज कई एक लोगों से प्रश्न करते चले कि कैसे हम अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करें, और उनको उत्तर यही दिया गया कि आप सील के बल से अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। अरे भाई, सील क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? वो कई एक स्टेज में जाते जाते प्रहलाद महाराज के पास ही उनको भेजा गया। तो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रहलाद महाराज के पास गए और कहे कि हम आपसे सील की शिक्षा लेना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज कहे कि अभी मैनेजमेंट में बहुत हमारा टाइम जा रहा है, हमको टाइम नहीं है क्लास देने का। वो कहे कि जब आपको फुर्सत मिलेगा तभी दे दीजिएगा। तो अपॉइंटमेंट दिए तो वे ग्रहण किए। तो उसी क्रम में वो पूछे कि आखिर सील होता क्या है। तो प्रहलाद महाराज ही बतलाए हैं कि सील का मुख्य अर्थ है कि किसी को कष्ट न देना और दान देना, दूसरे का सहयोग करना। दूसरे जगह सील पर चर्चा है तो वहां सील का अर्थ लिखा गया है यह है कि विषम परिस्थिति में भी अपने स्वभाव का त्याग न करना, इसको सील कहें। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि बहुत विनम्र दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी बड़ा विनम्र दिखते हैं, लेकिन कहीं अपमान हो गया तब उनकी विनम्रता नहीं दिखती। तो यह सील नहीं है। एक बार की घटना है कि स्यमंतक मणि की चोरी हुई और उसमें अक्रूर जी पर भी एलिगेशन था, वो भी लिप्त थे। अभी तो बड़ा लज्जा महसूस करने लगे। अब द्वारका को छोड़ करके अपने ननिहाल काशी में चले गए। अक्रूर जी भक्त हैं, तब द्वारका के लोग उनका अभाव महसूस करने लगे और उद्धव जी उनको एक पत्र लिखे। चैतन्य चरितामृत में इसको दिया गया है, मूलतः भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। कह रहे हैं कि भृत्यस्य पश्यते गुरु न बिना अपराधा। अरे कि हमारे जो स्वामी हैं तो अपने सेवक के भारी से भारी गलती पर ध्यान ही नहीं देते, देखते ही नहीं है। भृत्यस्य पश्यते गुरु न बिना अपराधान सेवांग मनाग अपिकृतां बहुधा विपायते। और कोई व्यक्ति थोड़ी सी सेवा कर दे तो उसको बहुत मानते हैं। और आविष्करोति पिसने स्वपिना भी सुइया। और जो खल प्रकृति के लोग हैं तो उनमें भी दोष बुद्धि नहीं करते, दोष दृष्टि नहीं करते। सीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम। अरे जो पुरुषों में श्रेष्ठ है श्री कृष्ण है तो अपने स्वभाव से ही निर्मल मति, सील से निर्मल मति, मतलब विषम स्थिति में भी इनका स्वभाव बदलता नहीं है। तो आप भय मत कीजिए, आप यहाँ आ जाइए। तो हम यह कह रहे हैं कि सील का एक आशय यह है कि सुंदर स्वभाव है लेकिन विषम परिस्थिति में परिवर्तित न हो तो उसको सील कहा जाएगा। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सील संपन्न। प्रहलाद महाराज सील संपन्न थे, वो सुंदर स्वभाव था, सत्य संधो जितेंद्रिय। उनका एक गुण बतला रहे सत्य संध। सत्य संध का कई एक अर्थ है। वे सत्य में स्थित रहते थे। ये संध शब्द दो अर्थ में होता है, स्थिति और प्रतिज्ञा के अर्थ में। तो सत्य संध का अर्थ है कि सत्य में स्थित रहना। यह सत्य संध का दूसरा अर्थ है कि अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। कई एक लोग प्रतिज्ञा करते हैं, भक्त लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं, चार व्रत की प्रतिज्ञा करते हैं, सोलह माला जप का प्रतिज्ञा करते हैं, और उसमें एकदम स्थित रहना, और इसको सत्य संध कहा जाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहां सत्य संध का अर्थ कर रहे हैं कि जो सत्य का अन्वेषण करने वाला है, संध है, अनुसंधान सुनते हैं ना, उससे मिलता जुलता है। सत्य संध मतलब जो सत्य का अनुसंधान करने वाला, सत्य का खोज करने वाला, सत्य भगवान है, तो भगवान के खोज में है। जो भगवान को आत्मसात करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा सत्य संध। अरे भाई, कोई प्रश्न करेगा कि भगवान खोजने से मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, इसी संसार में मिल जाएंगे। उपाय सही होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु भव्य अन्नम अम्बोद्यमनेन वृत्ति। कई एक उदाहरण दिया गया है। यथाग्नि मेधस्य, जैसे अरणी है, लकड़ी है, उसी से आग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह उपाय है। अब देखिए, इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए। किसी को आग की जरूरत है, अब बहुत बहुत प्रयास करे, बहुत लोगों से प्रार्थना करे, तो आग उत्पन्न नहीं होगा। या बहुत तपस्या करे, ये माथा पटके, तो उससे आग उत्पन्न नहीं। लेकिन सही उपाय, क्यों दिया सलाई बार दे, क्यों घर्षण कर दे, आग उत्पन्न हो जाएगा। पहले के जमाना में दो लकड़ी का घर्षण करके आग पैदा कर लेते, तो कह रहे हैं कि यथाग्नि मेधस्। और जिसको घी की जरूरत है तो गाय से प्राप्त कर लेगा, गाय पालन करेगा, गाय से दूध प्राप्त होगा, दूध को दही बना करके घी प्राप्त कर सकता है। और भूमि से अन्न और जल प्राप्त कर सकता है। ये किसान है तो खेती करते हैं और अन्न उत्पन्न कर देते हैं। हो सकता है कि बड़ा बड़ा प्रोफेसर अपने लाइब्रेरी में शोध करता रहे वो अन्न नहीं उत्पन्न कर सकता। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वो केमिकल मिलाते रहे, अन्न उत्पन्न नहीं करेंगे। कुछ आर्टिफिशियल एक आध किलो कर दे, दूसरी बात है, वो भी ओरिजिनल तो होगा नहीं। ये बड़े बड़े वकील हैं, तो वे लोग अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। इनको बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता है। प्रोफेसर, ये वकील, पत्रकार, ये सब बहुत बुद्धिजीवी है, तो वे लोग अपने विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन कोई किसान है, हो सकता है कि अपना नाम भी नहीं लिख सकता, अपना नाम भी नहीं लिख सकता, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, लेकिन ट्रक दूसरे को अन्न दे देता है। उसका कारण है कि अन्न उत्पन्न करने का जो उचित विधि है उसका अवलंबन कर रहा है, और उचित विधि का अवलंबन करके व्यक्ति भूमि से अन्न ले लेता है, पानी ले लेता है पाइप करके। और कह रहे हैं कि जैसे ये सब उपाय है, या कोई हाल रोजगार करके अपनी वृत्ति चला लेता है, यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु भव्यान्नम्बु यदमिन उद्यमनेन वृत्ति जोगैर मनुष्य अधियंत हित्वा। और उसी प्रकार सही अवलंबन कोई करे, भक्ति योग का आश्रय ले, तो गुणेषु इसी संसार में, इसी शरीर में वो भगवान का अनुसंधान कर लेगा, अपने हाथ में कर लेगा, उनको प्राप्त कर लेगा। कवयो बदंती, बड़े बड़े विद्वान यही सिद्धांत दिए, या उसको भगवान का साक्षात्कार भी करेगा और उनका वर्णन भी कर सकता है। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सत्य संध, वे भगवान के अन्वेषक हैं। लेकिन भगवान के अन्वेषण के लिए तुरंत गुण है जितेंद्रिय, वे भगवान के अन्वेषण में लगे हुए हैं और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेगा, वह भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता। इंद्रियां जब उच्छृंखल हो जाती है तो व्यक्ति को अपने तरफ खींचने लगती। यही प्रहलाद महाराज उदाहरण दिए हैं कि बहवः स्वप्नैव गेह पतिं दुलन्ति, इंद्रियों के वृत्ति है कि अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है तो हम पर वे कब्जा कर लेते और घसीट मारती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्रहलाद महाराज के गुण के परिप्रेक्ष्य में एक कह रहे हैं कि सत्य संध वे भगवान के अन्वेषण में लगे हुए हैं, जितेंद्रिय भगवान का अन्वेषण करना है, भगवान का अनुभव करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाए। इंद्रियों को छूट देंगे तो मन उधर चला जाएगा, मन में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो मन को स्थिर करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। यह गुण प्रहलाद महाराज का दे रहे हैं, आत्मवत सर्वभूताना। प्रहलाद महाराज के व्यवहार को बतला रहे हैं कि भगवान के समान उनका व्यवहार था। शब्द है आत्मवत सर्वभूताना। आत्मवत सर्वभूताना का अर्थ है कि अपने जैसा सब जीवों को मानते थे। अपने जैसा मानने का अर्थ है कि अपने सुख दुख के समान दूसरे प्राणी के सुख दुख को समझना। जैसे हम अपने दुख से प्रभावित होते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उस दुख से प्रभावित होगा। वो अपने सुख दुख को समान दूसरे प्राणी के सुख दुख को मानना, इसको आत्मवत सर्वभूताना कहा जाता है। या दूसरा अर्थ है जैसे श्रील प्रभुपाद जी व्यक्त किए हैं कि आत्मवत सर्वभूताना, आत्मा मतलब परमात्मा भगवान, तो भगवान के समान सारे प्राणियों के साथ उनका व्यवहार था। भगवान का क्या व्यवहार है, चाहे किसी भी प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो भगवान उसके साथ स्नेह का संबंध रखे। हो सकता है कि ब्राह्मण है, सदाचारी है, उसके हृदय में भी भगवान वास करते हैं, उसके साथ भी है। और कोई खल व्यक्ति है या बहुत अपवित्र व्यक्ति है, उसके हृदय में भी वास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सबके साथ स्नेह का संबंध है। तो प्रहलाद महाराज का भी यही गुण है, आत्मवत सर्वभूताना। जैसे भगवान सभी प्राणियों को आत्मीय भाव से अंगीकार किए हैं, किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही प्रहलाद महाराज किसी से द्वेष नहीं करते थे, किसी का त्याग नहीं करते थे, सबके साथ आत्मीय व्यवहार रखते थे। वो कह रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूताना एक प्रिय सहृत्तम, सबके सहृत थे। और दासवत सन्नतार जानगी, कि जो आर्य हैं, सभ्य लोग हैं, ज्ञानी हैं, और उनके समक्ष एकदम सेवक जैसा रहते थे, उनके चरणों की सेवा सेवक के समान करते थे। और पितृवत दीन वत्सल, जो किसी कठिनाई में है, दीनहीन है, तो पिता के समान उनकी सहायता करते थे। जैसे पिता की भावना अपने पुत्र के प्रति होती है, तो वैसे ही प्रहलाद महाराज की भावना किसी भी दीन दुखी के प्रति थी। और भ्रातृवत सदृश स्निग्ध, जो अपने समान के लोग हैं, समकक्ष के लोग हैं, तो उनको भाई के समान प्रेम करते थे। और गुरु शिष्वर भावना, और गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे, भगवान के सदृश मानते थे। आप शब्द देंगे देखेंगे और देख रहे हैं कि गुरु सु बहुवचन में दिया गया, लेकिन ऐसे समझना चाहिए कि बहुवचन का प्रयोग आदर के लिए किया गया। गुरुसु का अर्थ है जो मंत्र दिया है, दीक्षा गुरु है, और उनमें वे भगवत बुद्धि रखते थे, उनको भगवान के समान समझते थे। और विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जित, प्रहलाद महाराज में विद्या था, संपदा थी, रूप था और जन्म था, लेकिन फिर भी उनमें घमंड और अनम्रता नहीं थी। सामान्य रूप से व्यक्ति बड़े कुल में जन्म लेता है तो घमंड हो जाता है, और विद्या अर्जित कर लेता है तो उसका घमंड हो ही जाता है, बहुत धन प्राप्त कर लिया तो उससे घमंड हो जाता है, या रूप का घमंड होता है। ये सब ऐसे गुण है कि व्यक्ति में घमंड आ ही जाता है और वह उदंड हो ही जाता है। वो अच्छा रूप है, घमंड आ जाएगा, बहुत पढ़ाई कर लिया, घमंड आ जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि ये सब घमंड को या उदंडता को जन्म देने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन दोषों से वर्जित थे, विद्या से संपन्न होने पर भी घमंड में नहीं थे। ऐसे घमंड से पार होना बहुत भारी कठिन कार्य है। इक्के दुके लोग ऐसे मिलते हैं। भगवान तो बलि महाराज के प्रसंग में कहे हैं कि जिस व्यक्ति में जन्म कर्म जवानी रूप और विद्या धन इत्यादि का घमंड नहीं है, तो यही मानो कि उस पर हमारी कृपा है। जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धना देवी यद जश्चन भवित स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। वो अच्छी विद्या प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, और फिर भी वो घमंड से वंचित है, उसके मन में घमंड नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं कि यही समझो कि हमारी कृपा से ही ऐसा, नहीं तो आ ही जाता है घमंड। इतना घमंड आ जाता है कि व्यक्ति अपने गुरु का अनादर कर देता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सबसे युक्त होने पर भी इसके दोष से रहित थे, और ऐसे कई एक गुण बतला रहे हैं। उसी क्रम में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेश निष्क्रिय। प्रहलाद महाराज के एक गुण थे कि वे संकट के घड़ी में कभी विचलित नहीं होते थे, उद्विग्न नहीं होते। व्यसन का अर्थ है संकट, दुख। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति संकट आने पर, कोई कठिनाई आने पर बहुत उद्विग्न हो जाता है, अपने धैर्य को खत्म कर देता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसने से, कितना भी बड़ा संकट है, कितनी भी बड़ी कठिनाई है, लेकिन वे बिल्कुल स्थिर रहते थे। और वास्तव में यह बहुत भारी गुण है। कोई संकट आ गया तो दुखी होने से कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि कुछ घाटा जरूर हो जाएगा। कोई संकट है तो उस समय सबसे प्रथम आवश्यकता है कि व्यक्ति धैर्य का अवलंबन करे। महाभारत में एक प्रश्न है कि मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे किं श्रेयः पुरुषस्य ही, कि कोई बहुत भारी संकट में है तो उसका कल्याण का साधन क्या है, कैसे उसका कल्याण होगा। भाई कैसा संकट है तो कह रहे कि बंधु नाशे राज्य नाशे अथवा पुनः, अरे किसी बंधु का निधन हो गया, या किसी का कोई पद है वो चला गया, या धन नष्ट हो गया, राज्य खत्म हो गया, ऐसे ऐसे संकट आते रहते हैं। ये तो संसार मर्त जगत है, कभी भी किसी का निधन हो सकता है, उस क्रम में हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, बहुत भारी दुख होता है। ऐसा देखा जाता है कभी छोटे छोटे बच्चे हैं और पिता का निधन हो जाता है, माँ का निधन हो जाता है, भाई का निधन हो जाता है, या कोई कोई नौकरी कर रहा है और ऐसा देखा जाता है कि 24 घंटा के नोटिस पर उनको पद से हटा दिया जाता है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई किसी स्वजन का निधन हो गया, ये पद समाप्त हो गया, राज्य समाप्त हो गया, वो क्या किस चीज का अवलंबन करने से कल्याण होगा, श्रेय क्या है। वो कह रहे हैं भीष्म पितामह जी कि पुत्र दारे सुखेश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा, कि कोई अपने पुत्र से रहित हो जाए पत्नी से रहित हो जाए या किसी प्रकार का सुख है उससे रहित हो जाए। यज्ञस्य व्यसने कृच्छे धृति श्रेयस करी नृप, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे हैं। तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन उस स्थिति में यदि वो धैर्य का अवलंबन करता है तो उसी से उसका कल्याण हो जाता है। तो धैर्य कल्याणकारी है। और धैर्येण युक्तस्य सत शरीरम न विसीर्यते, जो व्यक्ति धैर्य का अवलंबन करता है तो कम से कम शरीर उसका ठीक रहेगा। देखते हैं ना कि जो बहुत शोक में हो जाते हैं तो आज के शब्दावली में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो बंधु का नाश हुआ, धन का नाश हुआ, घाटा लगा ही, अब शोक कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी पैसा खर्च होने लगता है और बहुत दिन तक प्रॉब्लम चलती रहती है। तो कह रहे हैं कि धैर्येण युक्तस्य सत शरीरम न विसीर्यते, भाई जो धैर्य से युक्त है तो कम से कम उसका शरीर ठीक रहेगा। और विशोकता सुकम धत्ते धत्ते चारोग्य मुद्दम, और यदि वो टेंशन फ्री है, शोक से रहित है और उसको सुख की प्राप्ति होगी और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और प्रहलाद महाराज के गुण को बतला रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, किसी भी दुख के स्थिति में उद्विग्न नहीं होते, धृति से युक्त थे। और निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेशु गुणेशु अवस्तु दृक्, और कह रहे हैं कि भोग के प्रति उनका लोभ नहीं था। भोग को दो भाग में बांट रहे हैं, एक को श्रुत और एक को दृष्ट। कुछ कुछ सुख को हम लोग यहां देखते हैं, जैसे मंत्री का पद है या और भी पद है, तो उसके सुख को, उसके ऐश्वर्य को हम लोग देख रहे हैं, तो इसको दृष्ट कहा जाता है। और कोई कोई चीज है कि उसको देखे नहीं है, केवल सुन रहे हैं। जैसे स्वर्ग का सुख है तो कोई देखा तो नहीं है, सुन रहा है, तो उसको श्रुत कह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि वे निष्प्रिय थे, जो दृष्ट सुख है और उसमें भी निष्प्रिय थे, उसकी इच्छा नहीं कर रहे हैं। और जो श्रुत सुख है उसमें भी भावना था कि वो अभी वास्तविक नहीं है, अवस्तु दृक्, वास्तव में व्यक्ति स्वर्ग का सुख सुनता है, लेकिन श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, ये जो श्रुत सुख है वो वह यहाँ के सुख के समान ही दूषित है। देखिए, इस संसार में जो व्यक्ति जितना बड़ा पद प्राप्त किया है, जितना सुखद स्थिति प्राप्त किया है, और उतना ही वह दुख का अनुभव करता है। अब अवसर आने पर मुख से बात निकल जाती है। एक बार भक्त लोग हमको एक बिहार के मुख्यमंत्री के पास ले गए, तो उस समय वे इलेक्शन में उनकी पार्टी का पराजय हो गया था, और उनका मैं दुख अनुभव किया। कितना दुख है, शायद वो मुख्यमंत्री न बने होते तो उतना दुख का अनुभव नहीं करते। और जैसे यहाँ का कोई भी सुख है तो वह टेंशन से मुक्त नहीं है, उसमें दुख का सम्मिश्रण जरूर है। तो उसी प्रकार जो श्रुत सुख है, स्वर्ग इत्यादि का सुख है, तो वहां भी दुख मिश्रित है। यद्यपि एक दृष्टि से देखा जाए तो वहां कितना भी भोग कीजिए शरीर में कोई थकावट नहीं होगा, या जो भी भोग प्राप्त करना चाहिए जितना रस पीना हो पीते रहे, तो इस सब दृष्टि से तो वहां बहुत सुख है, लेकिन वहां फिर भी एक जलन व्यक्ति महसूस करता है। वो जलन इस बात का है कि स्पर्धा है, ये हमारे बराबर दूसरा है तो उसको देख करके जलते हैं, और कहें उसे हमसे बड़ा पद प्राप्त किया है तो उसे हमेशा कष्ट भोगते रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम का शब्द है, भगवान बोल रहे उद्धव जी से कि श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, ये जो श्रुत सुख है, स्वर्ग इत्यादि का सुख है, तो वह यह इस संसार के सुख के समान ही दूषित है, कोई इससे भिन्न नहीं है और उसको प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। कभी कभी तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हम बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन उस यज्ञ का फल प्राप्त ही हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। भगवान की भक्ति है यह कभी निष्फल नहीं जाता है, लेकिन जो दूसरा कर्मकांड इत्यादि है स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला, तो कृषिवत च निष्फल, कभी कभी तो कृषि के समान निष्फल चला जाता है। जो गांव के हैं उनको पता होगा कभी कभी फसल तैयार है, एकदम गेहूं या सरसों का फसल तैयार है, अब दो चार दिन में खलिहान में आने वाला, और तब तक पत्थर गिर गया सब खत्म। और उसी तरह बड़ा बड़ा अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और थोड़ी सी मंत्र में अशुद्धि हो गई सब चौपट। अरे चौपट का कभी कभी परिणाम उल्टा आ जाता है। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि इस संसार के सुख कोई वास्तविक नहीं मानते, अवस्तु वास्तविक नहीं, ये तो सपने के समान। और जो स्वर्ग इत्यादि का सुख है और उसके लिए भी उनकी कोई स्प्रिया नहीं थी। तो दांतेन्द्रिय प्राण शरीर दि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुर, अरे कि वे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे थे, शरीर पर नियंत्रण रखे थे, मन बुद्धि पर नियंत्रण रखे थे, और उनके मन में कोई कामना नहीं थी। तो कह रहे हैं कि प्रशांत कामो रहिता सुरोसुर, यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था लेकिन उनमें कोई आसुर भाव नहीं था, असुर के गुण से वे युक्त नहीं थे, असुर के गुण से बिल्कुल रहित थे। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कई एक गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। और हम लोग प्रहलाद महाराज के गुण पर और भी थोड़ा विचार करेंगे, जो उनके स्टूडेंट हैं साथ के हैं असुर बालक, उनके गुण पर विचार करेंगे और इसके बाद प्रहलाद महाराज के शिक्षा पर विचार करेंगे। और इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम का अंश है, और आप लोगों की रुचि होगी हम लोग संस्कृत के शब्दों के साथ इसका आस्वादन कर सकते हैं। मैं भी तो अभी उस भावना में पूरा भावित नहीं हूं, धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके एक एक चीज को ग्रहण करूंगा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा।